सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने
बोले भगवान महावीर स्वामी आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज समावनी का जन्म हम लोग परंपरा से इस पर्व को मनाते हैं। जिन्होंने इसे शुरू किया होगा उनका उद्देश्य निर्मल ही रहा होगा, फिर बार बार को उन चीजों में धीरे धीरे कमी आने लगी। मैं कई बार इस बात से विचार करता हूं, दो चीजें हमेशा आती हैं सामने कि अरे हमने वचन से तो क्षमा मांगी लेकिन अंतरंग में हमारे उतनी निर्मलता नहीं आ पाई, तो क्या हमारे हमको वचन से भी क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। ये बात जो है एक मन में आती है हमेशा, और दूसरी बात ये आती है कि हम अपने परिचितों से अपने मित्रों से अपने बहुत निकट संबंधियों से ही क्षमा याचना करते हैं, जिनके प्रति मन में हमारे दुराव है, जिनके प्रति हमारे मन में अच्छा भाव नहीं है, उनके प्रति ज्ञानी हम क्षमा भाव धारण करते हैं। तो हमेशा जब भी ये प्रसंग आता है तो ये बात मन में आती है और ठीक भी है। तो जो व्यक्ति अभी वचन से ही क्षमा नहीं कर पा रहा है, क्षमा नहीं मांग पा रहा है, वो व्यक्ति अपने अंतरंग से कैसे मांगता है।
तो जब हम वाणी से क्षमा मांगते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या रहा होगा कि चलो भाई कम से कम बात न बिगड़े, अब भीतर से तुम्हारी जैसी अदावत हो सो अपनी भंजावत रहियो, बाद में हाउ अदावत कहो बाद में कर परियो, लेकिन अगर चार लोगों के सामने तो हाथ जोड़ ले भैया और कह दे के क्षमा करो हमें और बात खत्म हो जाए। ऐसा शायद पहले ऐसा कुछ भाव रहा हो कि बाहर से कम जो है इस तरह जो वातावरण में कहीं क्षोभ उत्पन्न ना हो उसके लिए शायद वाणी से क्षमा को रखा गया हो, इसलिए आज का दिन जो है। और अचानक क्या होता है कई बार जब समूह में हम क्षमा याचना करते हैं तो औपचारिकता के चलते चलते और कई बार सही सही में भी हो जाता है। एक घटना थी जब हम खुरई में चतुर्मास कर रहे थे उस समय ये टेलीविजन पर रामायण चलती थी, है ना, तो उसमें भरत मिलाप दिखाया गया और वहीं खुरई का एक दो भाई थे तो छोटा भाई जो है वो नाराज होके बड़े भाई से बहुत झगड़ा हो गया था तो चले गया था और दो तीन साल से वो नहीं आया था, वो कहीं दूर था, मुझे याद नहीं कि कहां था, पर वहां उसने भी रामायण में वो सीरियल देखा और इसने इधर देखा और दोनों के मन में एक साथ हुआ कि अरे ऐसा क्या, भाई भाई हैं और इतनी कषाय, मतलब इतना क्या करना है, हम तो अब जल्दी से जाते हैं और भाई से जो है मिलकर के क्षमा मांग लेंगे। छोटा भाई सोच रहा हम जल्दी से पहुंच जाएं, बड़ा सोच रहा हम जल्दी से पहुंच जाएं, और सच्ची घटना है ये, बड़े भाई को इधर से गाड़ी थोड़े देर से मिली लेकिन छोटे भाई को उधर जल्दी गाड़ी मिल गई। और मजा ये हुआ कि वो छोटा भाई स्टेशन पर गाड़ी से उतरा और दूसरी गाड़ी में बैठने के लिए उसी समय बड़ा भाई उस स्टेशन पर पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फूट फूट कर रोने लगे, गले लगे और उनकी जो है इतने वर्षों की जो है बात एक मिनट के अंदर समाप्त हो। जैसे उधर टेलीविजन पर दूसरे का मिलाप देख करके उनके मन में मिलन का भाव आ गया, भैया 50 लोगों के आपस में भैया क्षमा करो, भैया क्षमा करो, हो सकत के झूठी निकल जाए मुंह से कि भैया क्षमा करो। तो एक बार जो है ऐसा अगर हो जावे, हम सपना में थे, उधर दोनों भाइयों में आपस में बोलचाल तो थी पर घर का आना जाना नहीं था, न घर के बाल बच्चे न बहुएं, कोई एक दूसरे के घर जाते थे, लेकिन अब चौका लगो और दो ही जनों के चौका लगो। अब दो ही जनों को तो अब कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता व्यक्ति को कि अगर हम पहले क्षमा मांगे ले तो हम नीचे भय जाते। ऐसे में कई बार जो है नहीं मांग पाता व्यक्ति, उसके भीतर से तो भाव निकल जाता है कि मांग ली थी मगर अवसर की कोशिश में रहता वो कि कोई अवसर मिल जाता। और क्या हुआ कि उनके छोटे भैया के यहां पर हमारे आहार हो गए और बड़े भैया की रोज आदत थी कि दोनों जन हम जहां जाएंगे सो वहां आहार देने तो जाएंगे, अपनों सामान लेके। अब इनके तो जाए कि नहीं, अब इनका सोच बेगी, उनने कहीं का सोच बेगी, हम तो कौन उनके घर जा रहे, हम तो महाराज के आहार देवे जा रहे। तुम अगर करोड़ रुपया भी दे के हमें बुला उठे तो तुम्हारी सिद्धि न चाहते, मनो हम तो महाराज जी के आहार देने जा रहे, इसमें क्या बात। सो वो सहज भाव से और उनके यहां आ गए। छोटे भैया ने जैसे ही अपने घर में और बड़े भैया को प्रवेश देखा तो वे तो आहार वहार तो उनके एक तरफ और आंखों से आंसू आने, बस अब रोज को आवो जावो शुरू होगा, ने को उसने कही कि तुम आइयो, ने उनने कही, ने इनने कही और शुरू हो गया। और समाज में भी हो गया कि भैया उनका तो आना जाना शुरू हो गया, वर्षों से बंद था। अब जी हमारा कहने का आशय ये है कि हमारे पुराने लोगों ने और एक दिन ही ऐसा निश्चित कर दिया कि साल भर के करे उपद्रव एक दिन में हो सके, अगर हो सके तो आपके मन में इतनी निर्मलता आ सके तो भैया भी साल भर के भी करे हम एक दिन में। वैसे तो ये है कि तवारीखों के वे मंजर भी हमने देखे हैं जब लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है, वे दिन भी हमने देखे हैं जब एक क्षण को कोई चूकता है तो शायद सदियों सदियों उसका फल भोगना पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि हमारे परिणाम निर्मल नहीं हो पाते, लेकिन जो व्यक्ति अगर अपने परिणाम निर्मल कर ले तो सदियों के किए हुए अपराध भी एक क्षण में जो है वो मिटा सकता है। ये जैन दर्शन का बहुत बड़ा एक सच्चा पहलू है कि भाई हमने अनादिकाल से त्रुटियां की हैं, हम सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण ले लेवे और अपने परिणामों को निर्मल करना चाहें तो अनंत काल के कर्म भी जो है हम क्षण भर में नष्ट करके अपने उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करें। और दूसरी बात ये आती है बार बार मन में कि अरे अपने संबंधियों को जो है हमने पत्र डाले, हमें एक चिट्ठी जो है अपने विरोधी को भी तो डालना थी। तो भैया विरोधी को नहीं डाल पाई जा तो ठीक है, लेकिन संबंधी को डाली ए में कछु, माने हमने गलती नहीं करी। जे हमारे संबंध बने रहे हमेशा, ये टूट ना जाए कभी, ये भी भय व्यक्ति को रहता, क्योंकि किसी भी क्षण टूट सकते हैं संबंध। इसलिए जो हमारे निकट के हैं, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे भी उस दिन हमने कहा कि देखो तुम तो हमारे मित्र हो, शत्रु से तो कोई अपेक्षा नहीं होती कि वो अपन को दो मीठे शब्द के है, और ऐसे ही मित्र से अपेक्षा नहीं होती कि दो कड़े शब्द के है वो, है शत्रु से दो कड़े शब्दों की तो हमेशा अपेक्षा रहती कि अब कई हमने और अब कई तैयार ही बैठे कि वे तो कहे ही, लेकिन मित्र से अपेक्षा नहीं होती है तो हम मित्र के प्रति क्या व्यवहार करते कि देखो भैया जैसी हमारी चली आ रही है अभी तक मित्रता चलती रहे, जाए एक हमारा कार्ड आपके पास हम भेजें देता, आप हमारे पास भेज देना, भले ही हम वर्षों बाद मिल पाएंगे, लेकिन ये हमारा जो संबंध है वो ज्यों का त्यों, हमें उनका पता तो याद है कम से कम। आज के इतने व्यस्त जीवन में एक लेख आया था कि एसटीडी और इंटरनेट ने जो है व्यक्ति के संबंधों को लगता है कि बहुत जोर दिया है, पर अब वो मजा खत्म हो गया जो चिट्ठी लिखने का मजा होता था, और इंतजार होता था कि अब पहुंच गई हुई है, अब दार पे हुई है होते से, अब देखो का लिखा थे हैं? अब तो उनने हेलो कैसे हो ठीक है, हम बस खत्म रख दी, अब 2 मिनट से जाए पैसे ना गए नहीं। वो छोटी बात नहीं थी, कितने उससे लिखते, और फिर बाद में अगर भाई से पढ़तों ने बात हो तो वे पूछती कि हमें का लिखो, और तुम्हें भी जे जैनंद लिखी उन्होंने, ये क्या है, ये पत्र जो है ये व्यवहार था हमारा, एक छोटा सा कार्ड हम बुलौआ का डाल देते, क्या जरूरत है उसके डालने की, लेकिन हमारे संबंधों की सूचना है कि अभी भी उनके बीच प्रेम भाव बना। इसी तरह अगर हम इस चीज को आगे बढ़ा लेवे, और कभी अगर धोखे से जब 100 मित्रों को डाले हैं तो एक चिट्ठी पर अपने शत्रु का भी पता अगर अपने पास हो तो उस पे भी चिट्ठी लिख करके धीरे से डाल दें कि हमारी तरफ से तो हमने जो है अपना मन साफ कर लिया, आप करो तो करो बहुत अच्छा है। मगर आज के समय में बहुत सावधान रहना पड़ता, आज के समय में अच्छे काम करने वाले को ही सावधानी रखना पड़ रही, बुरे काम करने वाले को कछु सावधानी की आवश्यकता नहीं है भैया। अच्छे काम अब अगर हम जो है तनक नीचे होके इनसे क्षमा मांगे ले तो भी तो पहले ही से मूड पे बैठी थी और बैठी जाती कि कल आए ना लाइन में, मांगी कि नहीं मांगी। अब अगर निरपराधी व्यक्ति भी क्षमा याचना कर ले भी तो ऐसा लगने लगता कि अपराध किया होगा, तब तो मांग रहे, तब तो झुक रहे इतने, नहीं तो काय को झुकते, कछु खोट हुई है जब तो हाथ पांव जोड़ रहे। अरे भाई आज का संसार ऐसा विचित्र है, हमारे तो जीवन निकल गया, बहुत अनुभव किया इस बात का कि आपन संसार में जो है, पर फिर भी देखो, फिर भी हम सलाह क्या देंगे, यही देंगे कि आनंद तो उसी में है, आनंद अदावत में नहीं है, आनंद तो समझौते में है, आनंद तो इसी में है कि थोड़े से झुक करके जो है अपने रास्ते आगे निकल जाओ, संसार में अपने कर्मों की तरफ देखो। जब युधिष्ठिर कहते थे कि हमारे गुरुजी ने कभी हमें ये नहीं सिखाया कि अपने अपराध की क्षमा मांगो, हमारे गुरुजी तो कहते थे कि अपने अपराध का दंड मांगना सीखो, जब तुम अपने अच्छे कार्य का पुरस्कार चाहते हो तो अपने बुरे कार्य का दंड क्यों नहीं मांगते, क्षमा क्यों मांगते हो। ये चीज जो है वो अगर सबके जीवन में आ जाए, जैन दर्शन में तो इसी के लिए आलोचना कहा, इसी के लिए प्रतिक्रमण कहा कि भैया अपने दोष जो है और हम स्वयं जाकर के, लेकिन किसके सामने कहना अपने दोष, जिसका चित्त निर्मल हो, जो हमारी कमियों की वजह से हमें नीचा ना दिखावे, हमारी बात जान करके हमारी कमियां जानकर जो हमें उससे ऊंचा उठाने का प्रयत्न करे उसके सामने कहना, और सबके सामने कहने से भूल क्यों अपनी कही थी, भूल क्या ये भी नहीं थी, भूल क्यों अपनी कही थी, भूल क्या ये भी नहीं थी, अब सहो विश्वासघाती विश्व का उपहास, जीवन भूल का इतिहास, काटती भूलें प्रतीक्षण कह उन्हें हल्का करूं मन, शीघ्रता में कर लिया पर शत्रु पर विश्वास, जीवन भूल का इतिहास, ठीक होगा पथ समझकर मैं रहा चलता उम्र भर, किंतु पग पग पर बिछा था भूल का छलपाश, जीवन भूल का इतिहास, हर आदमी का जीवन भूलों का इतिहास है। यहां तो जो है भूल मांग, भूल अपनी स्वीकार करना भी एक भूल है, देखो कैसा ये संसार है, लेकिन परमार्थ ये है कि चुपचाप अपनी भूलों को स्वीकार करते हुए, उनका परिमार्जन करते हुए आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। पिछले 10 दिनों में अपन ने क्या किया, मैं सोचता हूं यही कार्य किया है, अपन देखें तो हमने एक बीज से और वृक्ष बनने की यात्रा संपन्न की है। जैसे एक बीज मिट्टी में गिरता है, मिट्टी या पृथ्वी क्षमा की सूचक है, पृथ्वी को क्षमा एक नाम दिया है, तो जब भी हम पृथ्वी में गिरते हैं वही तो क्षमा है। बीज ने जब पृथ्वी में गिरना स्वीकार कर लिया तब उसके जीवन में अब वृक्ष बनने की शुरुआत हो गई, लेकिन अकड़े अकड़े रहोगे जमीन में पड़े रह जाओगे, गलो गलो जमीन में, अपने को गला दो, बीज अपने आप को गला देता है, ये गला देना क्या है, ये मृदुता है, ये मार्दव है। अब उठो ऊपर, अब ऊपर उठोगे और अगर तेरे मेरे उठोगे तो जमीन से बाहर नहीं निकल पाओगे, भीतर ही भीतर फैलते चले जाओगे। तेरे नहीं सीधे हो, सीधे होंगे तो फिर बाहर निकल करके आ जाता है। लेकिन देखना उसमें से दो छोटी छोटी सी पत्तियां निकलती, उन्हीं के ऊपर भी जो बीज हते भी वही पे चिपके रहते, रोई पे थोड़ी सी मिट्टी भी चिपकी रहती, बड़ा भारीपन रहता उस समय। और वो मिट्टी हट जावे तब भी पंखुड़ियां पूरी की पूरी खिल जाती हैं। ये मिट्टी क्या है, लोभ की मिट्टी है। लोभ हटे तो जो है निर्मलता आ जाती है, और जैसे ही निर्मलता आई फिर देखो सूरज का प्रकाश सत्य तो बाहर फैला ही हुआ है, उस पौधे को जो है वो अब सच्चाई संसार की समझ में आने लगती बाहर निकल के। और छोटा सा पौधा है भैया, अब भाई गैया निकलेगी सो पांव धर देगी सो मिट जाएगा, तो क्या करते, एक उसके चारों तरफ सुरक्षा की बाड़ी बना देते उस वृक्ष के बढ़ने के लिए। ऐसे ही तो जब हमने सत्य को जान लिया तब फिर हम अपने चारों तरफ कहीं हमारे जीवन में बुराई ना आ जाए इससे बचने के लिए संयम की बाड़ी लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद आगी बरसे चाहे पानी बरसे चाहे ठंडी पड़े, वृक्ष तो जो है धीरे 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 बढ़ते ही चला जाता, अपनी तपस्या में वो सफल हो जाता है। उसके बाद ही तो तप आता है, और तपने के बाद क्या प्राप्त होता है, तपने के बाद इतना विशाल वृक्ष हो जाता है उसके पास, अब फूलों से वो लद गया है। और फूल वृक्ष अपने पास रख ले वे तो फिर फल नहीं मिलने वाला, तो वो अपने फूलों को फौरन छोड़ता चला जाता, त्याग कर देता, और फिर क्या होता, अकेला खड़ा रह जाता, एकाकी कौन है उसके पास। और आखिरी में वो अपने फल भी छोड़ करके एकाकी जब खड़ा होता है तो जो आए उसकी छाया में सब बैठते हैं, सबके प्रति वसुधैव कुटुंबकम, ब्रह्मचरी के मायने क्या है, आत्मवत सर्वभूतेषु, अब मेरी आत्मा के समान सब हैं, किसके प्रति अपनी दृष्टि खराब करूं, सब अच्छे हैं। छोटा आवे तो बड़ा आवे तो गरीब आवे तो अमीर आवे तो पेड़ के नीचे सबके लिए छाया है, आकाश की तरह वो वृक्ष हो जाता, देखो पूरे दसों धर्म। और उसके बाद अब उस पेड़ के नीचे जो आएगा वो तो मीठे मीठे फल ही खाएगा। आज का दिन जो है वो हमें 10 दिन के जो हमने वृक्ष लगाया है अपने जीवन में उसके फल खाने मिलेंगे, और दूसरे को देने के लिए है कि हमने 10 दिन में बहुत मीठापन पा लिया मन में, अब हमारे इस मीठेपन के चलते आप भी हमारे प्रति मीठापन ले आओ अपने मन में, जो कड़वाहट हो उसको थूक दो। ये क्या चीज है, यही तो क्षमावानी है कि जो हमारे मन में कसायलापन था, कड़वाहट थी, वो तो समाप्त हो गई, अब हमारे मन में मीठापन आ गया है। ये मीठापन सब तरफ दिखाई पड़ना चाहिए, जीवन में भी, बाहर भी और भीतर भी, शायद इसी का नाम क्षमावनी है। बहुत सारे उदाहरण है भैया, ऐसे हमने आपको सुनाए भी। एक राष्ट्रपति जब सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद हुए, वो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री हैं इसलिए प्रधानमंत्री को संसद भवन में सब पहले आना चाहिए राष्ट्रपति के आने से 1 मिनट पहले। लेकिन उस दिन ऐसा संयोग जुड़ा कि राष्ट्रपति जो है एक मुश्किल से 1 मिनट पहले आए, और उसके तुरंत बाद जो है नेहरू जी आए। उनके मन में क्षण भर को आया कि मैंने इस सभा का उल्लंघन किया है, वे फौरन उठ करके और राष्ट्रपति के पास तक गए, प्रधानमंत्री होने के बाद दूत भी राष्ट्रपति के पास तक गए। और जैसे ही पहुंचे और पहुंच करके हाथ जोड़ने के लिए कुछ कहने लगे, राष्ट्रपति स्वयं खड़े होकर उनको गले से लगा लिया कि कोई बात नहीं, होता है, मैं भी देर से आ सकता, आप भी। ये उदाहरण जो लोग देख रहे थे उनके लिए था, कोई जरूरी नहीं थी कि राष्ट्रपति उठे, उठते ही नहीं है, लेकिन उन्होंने सब कुछ भूल करके कि मैं राष्ट्रपति हूं और स्वयं खड़े हो गए उनके लिए जैसे ही वो आए उनके पास। ऐसे उदाहरण राष्ट्रपति लिंकन के बारे में उदाहरण आता है कि मर्सी अपील की जाती है, जब किसी से बहुत अपराध हो जाए और मैंने सब कोर्ट में उसको सजा हो ही गई, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सजा होगी, तब आखिरी बार जो है राष्ट्रपति के पास एक चिट्ठी लिखी जाती, मर्सी अपील कहलाती, दया की भीख मांगी जाती कि आप आखिरी है, आप यदि हमें दया करके और रिहा कर दें तो कृपा होगी। तो उनके पास सैकड़ों पत्र आते थे, और पत्र ऐसे ही खाली नहीं आते थे, उन पर किसी ना किसी की सिफारिश रहती थी, बड़े बड़े लोगों की सिफारिश रहती थी कि भाई इनको क्षमा कर दिया जाए, राष्ट्रपति महोदय इनको क्षमा करें, और बड़े लोगों के दस्तखत उसके नीचे। एक पत्र ऐसा मिला जिसमें कि किसी की सिफारिश नहीं थी, जिस व्यक्ति ने मांगी थी क्षमा बस वही था। तो राष्ट्रपति ने कहा कि इसके पत्र में किसी की सिफारिश नहीं है। तो उनके जो पीए था उसने कहा इनका कोई होगा नहीं मित्र, ना किसी के पास इसकी पहुंच होगी, इसलिए इसके पत्र में किसी की सिफारिश नहीं है। तो मालूम लिंकन ने क्या कहा, लाओ पत्र मेरे पास, मैं सिफारिश करता हूं, इसका कोई मित्र नहीं है, मैं इसका मित्र हूं, और उस पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत क्या कर दिए, क्षमा कर दिए। ऐसे ऐसे जो है और उदाहरण भरे पड़े भैया अपने जीवन में, अगर जो है थोड़ी सी विनय आवे, थोड़ा सा मीठापन आवे तो कोई वजह नहीं है, लेकिन बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। दूसरे अपनी गलती के लिए कोई दूसरा क्षमा कर देवे, ऐसी अपेक्षा तो बहुत रहती अपनी, लेकिन अपन दूसरे की गलती क्षमा कर देवे ऐसा भाव अपने भीतर जागृत नहीं होता। दूसरे हम अपन से कोई गलती हो जाए तो अपन क्या चाहते कि भैया अब हो गई आप क्षमा कर दो, आप इतना ही नहीं क्षमा कर रहे हमारी, ऐसा मन में भाव आ जाता है। ऐसा ही उस समय विचार आना चाहिए कि दूसरा भी तो हमारे सामने हाथ जोड़ रहा है, इसके मन में भी जो है अपने अपराध के प्रति और ग्लानी तो हो रही होगी, हमें भी क्षमा कर देना चाहिए। कहते हैं कि क्षमा मांगने का अधिकार उसे है जो व्यक्ति स्वयं दूसरे को क्षमा कर सके। सबसे पहले लिखा खम्मामी सब जीवन, सबसे पहले मैं सब जीवों को क्षमा करता, तब फिर मैं कहता हूं कि सबे जीवा खमंतु मे, तब फिर सब जीव भी मुझे क्षमा करें। जब मैंने सबको क्षमा कर दिया, और क्षमा करने का मतलब यह है कि ज्यों के त्यों जैसे पहले थे वैसे ही हो जावे, जैसे कि बच्चे लोग इतनी जोर से लड़ाई करेंगे कि अपन देखेंगे तो कहेंगे अब तो हो गई इनकी, जी बोले ना कहो दो चार दिन, और बे थोड़ी देर में दो जने गले में हाथ डाले और झूमत झामत भी चले जा रहे हो तो चक्कर लगा रहे भी। ये उनके एक क्षण पहले लड़ भी नहीं आ, उसके बाद में ऐसे क्षमा कर दिया कि अब पूछने वाला कोई नहीं। वैसे अपन भी बड़े होने के बाद अगर वो बचपना अपने भीतर आ जाए, इस मामले में बचपना आ जाए, उसमें लिखा है कि एक बालक जैसे अपनी मां के सामने जाके निश्चल मन से निज अपेत कई तवा, बिना किसी क्षल और छद्म के, बिना किसी छिपाव और दुराव के, और जाकर के हम सामने खड़े हो जाते हैं, जब अपने गुरुओं के समीप जाकर के अपनी आलोचना कर लेते हैं, तो अनादि काल की भूलों से भी हम मुक्त हो सकते हैं भैया। जैसे कि बेटा, और अब भी माँ ने कपड़े पहनाए कि देखो अब मैं लेने करियो हैं, और घर में बहुत आरे बारे हैं सब जने, और खेल में भी नहीं जाओ, नहीं तो तुम सब खराब करे आओ, नहीं हम तो खेलने जाएंगे, जब आ जाएंगे तो हम आओ जाओ। अब गए भैया जी, अब क्या होगा, अभी आए नहीं है मेहमान, मगर जे पहले आ गए खेल खाल के, और जे पूरे छप गए और आकर के माँ के सामने, अब तुम्हें जो करना हो, मेहमान आ भी रहे हो उतरवा दो जी, दूसरे पहरा दो, नहीं तो तुम्हारी रीपा जीती हो ना, ऐसा करता वो। उसको कोई भय नहीं है कि मेरे कपड़े खराब, अगर खराब हो गए हैं तो कौन साफ करेगा, माँ ही तो करेगी। सच्चे देव गुरु शास्त्र ही तो हमारी उन भूलों को और हमें जो हमारी मलिनताएं हैं उनको दूर करेंगे। तो उनके सामने तो ऐसे बालक बच जाकर के खड़े हो जाते कि अब तो आपकी जिम्मेदारी है, हमसे तो जो होगा सो हो ही हो, अब तो कुछ हो नहीं सकता आगे के लिए, लेकिन मैं सावधानी रखूंगा। सावधानी रखने के बावजूद भी मेरे से फिर भी गलती हो सकती, पर संभालना आपको पड़ेगा। हाँ, ऐसा जो है अगर इस तरह अपन अपने व्यवहार में इस चीज को लाएं तो कोई वजह नहीं है। मैं सोचता हूं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकार, तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ। एक तो भैया अपने संबंधों में जितना बन सके सो एक मेक पना बनाए रखें, कभी अगर कहीं टूट जावे तो फिर ऐसे धागे जैसा जोड़े नहीं, जोड़ें तो कैसा जोड़ें, कांच के समान जोड़ें, जैसे कांच टूट जाता है अब जोड़ेगा कैसे, एरल डाइट लगाने से जोड़ेगा तो दरार दिखेगी, अब दो ही तरफ से दो ही पिघल जावें और फिर से जुड़ जावें तो फिर न देखे कछु, बताओ आप फिर दिखेगा क्या, लेकिन दो ही पिघलना चाहिए। दोनों टुकड़े जो कांच के हैं वे दोनों पिघल जावे तो एक मेक हो जाएंगे भाई। ऐसा जो है ये पर्व पिघलने का पर्व है, अगर एक तरफ से भी शुरुआत होती है तो दूसरे के लिए तो कोई ना कोई अवसर तो हमें देना ही चाहिए। हम अगर क्षमा भाव धारण करेंगे तो दूसरे के मन में भी उस अवसर की प्रतीक्षा ही रहती है कि कोई शुरुआत तो करे। तो ऐसे मेरे ख्याल से ये पर्व शायद पुराने लोगों ने इसी भावना से रखा होगा कि हम सब जो है अपने मन में, और इस बहाने कोई मलिनता हो तो उसको निकाल के और अपने जीवन को निर्मल बना सकें, इसी भावना के साथ। बहुत दिन से हमने मैत्री भाव नहीं किया है और बहुत लोग कह रहे थे, तो अब सबकी कही तो करना चाहिए हैं। मैत्री भाव करते हैं अपन, चार लाइन। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नेचर है। दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, दीन रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सच व्यवहार करूं मैं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, बने औरों का उपकार करूं। आचार्य गुरुवर विद्या मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते हैं अरहंतादिमा, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं जितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी, पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के, हमेशा की तरह आज भी अपन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। विचार में यदि वो आचरण बन जाए तो बहुत सामर्थ्य होती है, और यदि विचार आचरण न बन पाए तो वे विचार बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। हम जब आधे घंटे बैठकर यहां विचार करेंगे तो हमारा फर्ज है कि हम उसे अपने आचरण में भी लाने की कोशिश करेंगे। पुरानी घटना है। एक गांव के पास एक बहुत सुंदर मंदिर था। गांव के पास एक पहाड़ी के ऊपर वो मंदिर हुआ करता था। बचपन से एक छोटा सा बेटा सुनता आया था कि वो बहुत सुंदर पहाड़ है पर मंदिर है। उसके मन में आता था कि वो जाए और मंदिर देखे, पर कभी अवसर ही नहीं आ पाया। उसने सोचा बहुत पर जा नहीं पाया, जबकि बहुत दूर नहीं था वो मंदिर गांव से। बड़ा मजा है हम लोगों के साथ, जो हमारे जितना निकट होता है हम उसके पास उतनी ही देर से पहुंच पाते हैं, या कि पूरे जीवन नहीं पहुंच पाते हैं। हो सकता है कि हम अपने घर की 12 और 15 सीढ़ियां गिनने में ना आई हो, लेकिन कुतुब मीनार में 105 सीढ़ियां हैं ये अपन को मालूम हो सकता है, संभव है। उसे इतने निकट अपने गांव के बहुत सुंदर मंदिर है जाने का अवसर ही नहीं मिला। लोग सैकड़ों आया करते थे उस मंदिर के दर्शन कर लें, लेकिन वो 20 बरस उसके जीवन के गुजर गए, वो कभी पहुंच ही नहीं पाया। युवा हो गया फिर भी नहीं पहुंच पाया। एक दिन उसने कहा कि अब तो आज तय ही कर लिया कि कल सुबह, इससे पहले कि सूरज निकले, मैं चल दूंगा और पहुंच जाऊंगा मंदिर, देख करके ही लौटूंगा। और सचमुच वो दूसरे दिन सुबह अपनी लालटेन लेकर के और घर से निकला, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वो वहीं बैठ गया लालटेन एक कोने में रख करके, इस इंतजार में कि सूरज निकले फिर मैं आगे बढ़ूं। एक वृद्ध एक बहुत छोटी सी कैंडल लेकर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा वो मंदिर है वहां, वहीं देखने जा रहा हूं। तो बोले मैं भी जा रहा हूं, लेकिन जरा सूरज की रोशनी तो हो जाने दीजिएगा, ऐसे अंधेरे में कहां जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो चले जाऊंगा, कंदील की रोशनी है उसमें चले जाऊंगा। तो उस युवक ने कहा कि वाह, लालटेन तो मेरे पास भी है, आपकी कैंडल से ज्यादा रोशनी उसमें है, पर इतनी रोशनी से क्या होने वाला, 4 कदम रोशनी पड़ती है और 3 किलोमीटर तो अंधेरा पड़ा हुआ है, कैसे पहुंचेंगे। और बहुत लॉजिकल थी बात, बहुत न्याय संगत मालूम पड़ती थी कि 3 किलोमीटर का अंधेरा फैला हुआ है और 4 कदम रोशनी से क्या होने वाला है। वो बूढ़ा बहुत जोर से हंसा और उसने कहा कि सुनो मेरे साथ आओ, मैं बताता हूं तुम्हें कि ये 4 कदम की रोशनी भी पूरे रास्ते को रोशन कर देगी। और सचमुच जब वो 4 कदम चला तो मालूम पड़ा कि अब रोशनी और 4 कदम आगे पहुंच गई है, और अगले 4 कदम पर रोशनी और आगे निकल जाती है। एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ा संदेश ये छोटी सी घटना हमें दे जाती है। एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी प्रकाश की किरण हमारे जीवन में अगर है तो वो हमारे पूरे जीवन को अनलाइटेड, पूरे जीवन को प्रकाशित कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज कि अपने जीवन को प्रकाशित करना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम दुनिया भर में प्रकाश फैलाने के लिए बहुत लालायित होते हैं, लेकिन हमारे भीतर ही अगर अंधेरा रहे तो फिर रोशनी का दावा हमारा तो व्यर्थ ही होगा। हमने दो चीजें जान ली कि जो हमारे बहुत निकट है वो हम ही हैं, और हमें अपने को प्रकाशित करना है, और इस बात से नहीं घबराना है कि अंधेरा बहुत है और मेरे पास रोशनी बहुत थोड़ी सी है। नहीं, वो उतनी थोड़ी सी और उतनी, वो जो अच्छे बनने के लिए एक कदम हमने आगे रखा है, वैसे तो पूरे रास्ते तय करने के लिए एक ही कदम जरूरी है, एक ही फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप, पहला और आखिरी कदम ही, पहला कदम मंजिल की तरफ रखते हैं और एक कदम और रखना है और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। बीच का, बीच के कदम बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण होता है पहला कदम और आखिरी कदम, और वो सिर्फ एक ही कदम होता है। ऐसा विचार करके, और यदि हम अपने को अच्छा बनाने के लिए एक कदम भी रखते हैं तो वो पर्याप्त होगा, लेकिन इतने अकेले से हमारी बात पूरी नहीं होगी। हमें अगर अच्छे बनने की प्यास होगी तो हम कदम रखेंगे। हम जरा अपने भीतर झांक के देखें कि क्या हम सिर्फ अच्छे बनने का विचार करते हैं, या हम सिर्फ अच्छे बनने की बात करते हैं, या कि हम अच्छे बनने की दूसरे से अपेक्षा रखते हैं, या कि सचमुच हम अच्छा बनना चाहते हैं खुद। हमारे भीतर कोई प्यास है इस बात की कि नहीं, हमारे भीतर कोई तड़प है इस बात की कि नहीं कि मैं बुरा क्यों हूं और मुझे अच्छा बनना चाहिए। दूसरा बुरा क्यों है उसे अच्छा बनना चाहिए, जितनी ललक इस बात की होती है, काश अगर उतनी ही ललक इस बात की हो जाए कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूं और मुझे बहुत अच्छा बनना चाहिए। ये अगर हमारे भीतर बहुत तीव्रता से बात उमड़ने लगे, जिसको कहते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि हम अच्छे ना बन सकें। हम अच्छे नहीं बन पाए हैं इसका मतलब है कि हमारे भीतर कहीं ना कहीं प्यास में कमी है। जैसे सांस लेना कितना जरूरी है, जरूरी है। पानी पीना कितना जरूरी हो जाता है, दो चार दिन तक आदमी प्यासा नहीं रह सकता, दो चार दिन तक भूखा रह जाएगा, उसके बाद खाना कितना जरूरी है। जैसे सांस लेना, पानी पीना और खाना जरूरी है, ठीक वैसा ही मेरे भीतर अच्छे बनने की ललक या प्यास है कि नहीं है। एक युवक आया था साधु जी के पास और उसने साधु जी से कहा कि मुझे ईश्वर पाने की बहुत इच्छा है, मुझे क्या आप ईश्वर का दर्शन करवा पाएंगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, जब चाहो तब, अभी है कि तुम्हारा मन? तो उसने कहा अभी करवाएंगे, हाँ अभी करवा सकता हूं, तो करवाइएगा। उन्होंने कहा सुनो, मैं तो करवा दूंगा पर तुम मेरा एक काम करोगे उसके पहले? उसने कहा करूंगा, तो चलो मेरे साथ नदी किनारे चलो, मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन करवा सकता हूं। लेकिन थोड़ी सी परीक्षा तो करनी पड़ेगी कि तुम्हारे भीतर ईश्वर के दर्शन करने की सामर्थ्य है या नहीं है। नदी के किनारे ले गया और उसको जो है वो तो तैरना जानता नहीं था, तो साधु तो भीतर चला गया और उससे युवक से कहा कि आ जाओ। उसने कहा मैं तैरनी नहीं जानता। उसने कहा मैं तो हूं, और उसके भरोसे वो नदी में उतर गया। लेकिन डूबने डूबने का हुआ तो उस साधु ने उसको पकड़ के और डुबा दिया, और वो तो पानी वानी सब उसके मुंह में भरने लगा और सांस रुकने लगी, बहुत मुश्किल हो गई उसको। उसने कहा करते क्या हैं आप? उसने कहा कुछ भी नहीं बोला वो साधु, डुबाते ही चला गया उसको। एक मिनट के बाद बाहर निकाला तो उसने बहुत गहरी सांस ली और कहा कि आप क्या कर रहे थे, मुझे मानना चाह रहे थे क्या? उसने कहा नहीं, मानना नहीं चाह रहा था, मैं तुमसे ये पूछता हूं, जब मैंने तुम्हें पानी में डुबाया था तो तुम्हें क्या लग रहा था, तुम ईश्वर को उस समय चाहते थे या कुछ और चाहते थे? उसने कहा कुछ नहीं चाहता था, मुझे तो लग रहा था कि एक सांस मिल जाए, एक बार सांस लेने मिल जाए, फिर मुझे और दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। तो साधु ने कहा कि सुनो, जितनी प्यास उस समय तुम्हें उस एक सांस की थी, जिस दिन जीवन में उतनी प्यास ईश्वर को पाने की हो जाएगी, ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है, वो तुम्हारे भीतर प्रकट हो। तो दूसरी बात अपन ने यह समझी कि यदि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो अच्छाई, एक अच्छाई से शुरू करना पड़ेगा, और दूसरी बात कि वो एक छोटी सी जो अच्छाई हम अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं उसकी हमारे भीतर जितनी गहरी प्यास होगी वो अच्छाई हमारे जीवन में उतनी आसानी से आएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जीवन अच्छा बनने लगता है, बनते बनते हम छोड़ देते हैं। तो फिर तीसरी चीज निरंतरता, कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छे होना चाहते हैं तो अच्छे होने का विचार है, एक अच्छाई अपने भीतर हमने डेवलप भी की है और अच्छे होने की हमारे भीतर प्यास भी है, लेकिन वो निरंतरता बहुत जरूरी है। पुराने लोग शायद इसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए और बहुत छोटी छोटी बातों को जीवन में शामिल कर देते थे, जैसे सुबह उठो तो जय जिनेंद से शुरू करो, रास्ते में कोई मिल जाए उससे भी जय जिनेंद, और जब रात सोने लगो तब भी कहो जय जिनेंद, दिन भर में जय जिनेंद्र भूल ना जाए। व्यक्ति से मिल रहे हैं तो व्यक्ति से बाद में मिल रहे हैं, पहले कह रहे हैं जय जिनेंद्र, तुम्हारे भीतर बैठे हुए जिनेंद्र को मैं प्रणाम करता हूं, मेरे भीतर बैठे हुए को तुम जल्दी से कर लो और याद बना रहे कि मैं ओरिजिनली वही स्वरूप वाला हूं जो भगवान अरंत और जिनेंद्र का है। शायद ये उन लोगों की अप्रोच रही कि वो निरंतरता बनी रहे सुबह से शाम तक। भैया एक कदम कोई अपने घर की तरफ चले और 100 कदम दूसरे के घर की तरफ चले तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो कब अपने घर पहुंचेगा या दूसरे के घर पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। हम यही तो करते हैं, हम 100 बुराइयां कर लेते हैं, एक छोटी सी थोड़ी सी अच्छाई करते हैं और सोचते हैं कि हो गया हमारा काम। नहीं, स्टार्टिंग में तो एक अच्छाई से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो अच्छाई बढ़ती चली जाए इसके लिए मुझे प्रयत्न करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बनी रहे। एक पहला कदम हमने रखा है तो इसके बाद यात्रा उसी दिशा में निरंतर होती रहे, कदम रुके नहीं, एक एक कदम जो है वो आगे बढ़ता चला जाए। मैं रोज देखूं कि मेरे जीवन में जो मैं अच्छाई का विचार करता हूं वो आज थोड़े आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी। भवानी प्रसाद मिश्र से पूछो तो वो कहते थे, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सुबह तू उस जगह से बढ़ के सो। सोने से पहले ये देख लो कि सुबह जहां जागे थे उससे एक कदम आगे बढ़े कि नहीं, कि दिन भर में कुछ यात्रा ही नहीं की मैंने अपने जीवन में, वहीं के वहीं, या कि होता है कई बार कि हम और पीछे हट जाते हैं। अगर ये हमारे जीवन का एक उद्देश्य बन जाए कि अच्छाइयों को हम निरंतरता दें तो कोई वजह नहीं है कि हमारा जीवन अच्छा ना बन पाए। हम अच्छाई की अगर एक कदम आगे ना रखें रोज तो कम से कम पीठ तो ना करें। हमारे साथ ये बहुत मुश्किल है कि कभी कभी अच्छाइयों की तरफ हम पीठ कर देते हैं। जब अच्छाइयां या अच्छे लोग हमारे सामने आते हैं तो हम उस तरफ आगे नहीं बढ़ते बल्कि उस तरफ पीठ कर लेते हैं। हमें ये भी सावधानी रखनी चाहिए कि अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो जो अच्छे हैं वे हमारे हमेशा सामने रहें, उनकी तरफ हमारी पीठ ना हो जाए। देखो जब हम संसार की तरफ जाना शुरू करते हैं उसके पहले हमारे पुराने लोग क्या कहा करते थे, दर्शन करके आओ फिर दुकान जाना, फिर संसार में प्रवेश करना पहले जाकर के भगवान के दर्शन तो कराओ। और आप देखते हैं कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो पीठ किस तरफ होती है, संसार की तरफ पीठ होती है और भगवान की तरफ मुख होता है, लेकिन जब लौटने लगते हैं तब संसार की तरफ मुख होता है और पीठ भगवान की तरफ, लेकिन भगवान को पीठ नहीं दे रहे हैं बल्कि उनकी तरफ पीठ करके ये कह रहे हैं कि जरा थपथपा दो पीठ, संसार में जा रहा हूं, भटक ना जाऊं, वापस लौट के आऊंगा। शायद उस समय अगर ऐसा भाव रहे तब भी हमने पीठ नहीं दी है, अच्छाई को हम कभी पीठ ना दिखाएं, अच्छाई हमेशा हमारे सामने रहे, हम निरंतर उसकी तरफ ही बढ़ते चले जाएं, उसे अपने सामने रखें। सूरजमुखी देखा होगा, वो सूरजमुखी का जो फूल होता है वो जैसे जैसे सूर्य मूव करता है ठीक वैसे ही वैसे वो कभी सूर्य को पीठ नहीं देता। अच्छाइयों को पीठ दिखाने का मतलब है बुराइयों में उतर जाना, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे जीवन में अगर मुश्किलें आई हैं तो वो किसी और की वजह से नहीं आती हैं, हमारे अपने अच्छाइयों की तरफ मुख न होने की वजह से या अच्छाइयों की तरफ पीठ हो जाने की वजह से आती हैं। और आखिरी बात कि हमारा जीवन अच्छाइयों के लिए पूरी तरह समर्पित होना चाहिए, तो हम सचमुच अच्छे बन पाएंगे। मेरे ख्याल से इतने में पूरी बात हो जाएगी। समर्पण क्या चीज है ये थोड़ा सा समझने जैसी चीज तो नहीं है पर अनुभव करने जैसी चीज तो है। पर क्या करें, शब्द तो उस अनुभव को बताने के लिए जरूरी है, इसलिए शब्दों का आलंबन ले रहा हूं समर्पण के बारे में कहते समय, वरना तो कब हम कहां झुक जाते हैं ये मालूम नहीं पड़ता, जब सिर उठाते हैं तब मालूम पड़ता कि अरे हम तो यहां झुक गए थे। इतना ऑल ऑफ सडन होने वाली चीज है समर्पण, कब होगा कहा नहीं जा सकता। हम तो रोज भगवान के सामने माथा टेकते हैं और शायद पूरी जिंदगी निकल जाए माथा टेकते टेकते, लेकिन सचमुच नहीं टिक पाते हैं, हम हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, हम कहां जुड़ पाते भगवान से, माथा टिक जाता है हम नहीं टिक पाते हैं, हमारी कषायें नहीं टिक पाती हैं, हमारा मन नहीं टिक पाता है वहां पर, माथा जरूर टिक जाता है, माथा जरूर झुक जाता है, हमारा अपना अंतरंग नहीं झुक पाता है। पर क्या करें, वो प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, निरंतर प्रयत्न करेंगे तब कभी एकाध क्षण वो समर्पण और कहीं ना कहीं से वो प्रकट हो जाता है। अगर हमारे अंदर समर्पण की भावना है तो उसके जब कार्य हमें मालूम पड़ते हैं तब विश्वास हो जाता है कि हाँ सचमुच हमारा समर्पण है। जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो जिसके प्रति हम समर्पित हैं अगर सबसे पहले उसी का नाम आता है तो हम समझ जाएं कि हाँ सचमुच और किसी की अपेक्षा नहीं हुई, मुझे जिसके प्रति समर्पित हूं उसी की याद आई है तो मेरा समर्पण ठीक है। नहीं तो जब विपत्ति आती है तो दुनिया भर के बचाने के उपाय सूझते हैं। तो समर्पण को इस तरह से समझा जा सकता है कि जिसके लिए पाने को हम अपने पूरे जीवन को दांव पे लगाने तैयार हो जाएं वो कहलाता समर्पण। अब इससे ज्यादा और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पूरा जीवन हम दांव पे लगाना चाह रहे हैं जिस चीज को पाने के लिए, जिस श्रद्धा को पाने के लिए, वही समर्पण है। ऐसा ही क्या हम अच्छाइयों को हासिल करने के लिए पूरा जीवन दांव पे लगाने की तैयारी में है? अगर हमारे जीवन में इस तरह हमने अच्छाइयों के प्रति अपने को समर्पित कर दिया है तो कोई वजह नहीं है कि हमारा जीवन अच्छा नहीं हो। मुझे एक बहुत छोटी सी घटना याद आती है, उसके पहले एक और याद आ गई कि यदि वो सुना दें या कि वो जो हमने पहले तो ही सुनाएंगे, दोनों सुना देते हैं, बस दो दो मिनट की है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। बहुत जरूरी है कि जो हमने कहा कि निरंतरता हमारे जीवन में हो अच्छाइयों के प्रति और हमारा समर्पण भी अच्छाइयों के प्रति हो, उसके लिए दो अलग अलग तरह से चीजें हम अपने जीवन में कैसे देखेंगे कि हमारे जीवन में अच्छाई के प्रति हमारी निरंतरता बनी है या अच्छाई के प्रति हम समर्पित हैं। ये देखने के लिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। मैं पूछता जाता था कि कितना और रह गया, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा कि नहीं। तो एक किसान काम कर रहा था खेत में, उससे उसने पूछा, ये उदाहरण समता सागर जी महाराज बहुत सुनाते हैं। देखो भाई, उनका कल दीक्षा दिवस भी था, किसी ने याद नहीं किया पर मुझे याद था कि है कुंवर बदी तीज ईसरी में, और वैसे 25 सितंबर पड़ेगा डेट से जो है, पर हमें ऐसे दिन याद करके और अपनी विशुद्धि बढ़ाना चाहिए। जन्मदिन याद करके विशुद्धि नहीं बढ़ती है ना, दीक्षा का दिन याद करने से, जिस दिन हमने व्रत नियम संयम लिए हैं वो दिन याद करने से विशुद्धि बढ़ती है। आज वो याद आ गया अचानक और उनका उदाहरण भी जो है याद आ गया, वो हमेशा देते हैं। तो वो किसान से पूछा कि क्यों भाई, शहर मुझे जाना है और कितनी देर लगेगी? तो कुछ नहीं बोला वो किसान। उसने कहा कैसा आदमी है, भला आदमी कि मैं पूछ रहा हूं बता ही नहीं रहा। खैर आगे गया वो, 10-25 कदम चला होगा और उस किसान ने आवाज दी, चले जाओ ऐसे ही, शाम तक पहुंच जाओगे, इससे ज्यादा जल्दी चलोगे तो कल तक पहुंचोगे। मतलब वाह अजीब आदमी है, हम चले जा रहे हैं और बड़े आराम की चाल चले जा रहे हैं तो कह रहे शाम तक पहुंच जाएंगे, इससे ज्यादा जल्दी चलेंगे तो कल पहुंचोगे। उसने कहा होंगे, गांव के लोग वैसे ही गंवार रहते हैं, ऐसा लोगों को एक, मैं नहीं कह रहा हूं मतलब लेकिन ऐसा उसमें था, आप नहीं तो ऐसा समझे, अपन सब गांव में बैठे हैं तो अपन अपने को थोड़ी ऐसा मानेंगे। पर एक सामान्य रूप से मतलब ये कि जब हम आज, मैं सच सच कहूं तो आज के समय में जो जितना चालाक होता है वो उतना होशियार माना जाता है, और जितना सीधा सच्चा होता उतना गंवार माना जाता है। क्या करें, संसार की रीत देखो। तो उसने कहा कि कैसा आदमी है, अपन तो जल्दी जल्दी चलो। तो वो जल्दी जल्दी चला, जल्दी जल्दी चला, 2-1 किलोमीटर चले, जनाब गिरे, गिरे तो पैर वेर में चोट आ गई, बैठे हैं। शाम को 4-5 बजे वो किसान निकला, उसने कहा जल्दी चले हो गए, कहा जल्दी चले थे, अब समझ में आ गया कि आपने क्या कहा था। लेकिन आपसे एक बात पूछनी है कि जब हमने आपके सामने से निकले थे तब आपने बिल्कुल नहीं बताया, चुप रहे, फिर जब 25 कदम आगे निकल गए तब तो आपने कहा, ये भी मेरे मन में उत्तर नहीं मिला। और ये कैसा आपने कहा कि मैं धीरे धीरे चलूंगा तो शाम तक पहुंच जाऊंगा और जल्दी चलूंगा तो गिर जाऊंगा? तो उसने कहा सुनो,
मैं इसलिए चुप रहा जब तुमने पूछा कि कितनी देर लगेगी, तो जब तक मैंने तुम्हारी चाल नहीं देखी मैं कैसे बता दूं कि कितनी देर में पहुंचोगे। जब मैंने 25 कदम तुम्हें चलते देखा, तुम्हारी चाल देखी, तो मुझे लग गया कि अगर इसी चाल से चलेंगे, अगर आपका चाल चलन ठीक होगा, अपन अपनी भाषा में अगर कहें तो यही ना, निरंतरता अच्छाइयों की हमारे अपने जीवन में हम खुद देखें कि क्या सचमुच हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिसको हम पाना चाहते हैं, या कि उसके विपरीत रास्ते पर चल रहे हैं, हमारी चाल ठीक है या नहीं है। और दूसरी बात जो मैंने कही थी कि अगर ऐसे ही शांतिपूर्वक चलोगे, हड़बड़ी में चलोगे, तो पत्थर का रास्ता है, कहीं भी चोट लगेगी और गिर जाओगे, दूसरे दिन पहुंच पाओगे और वही स्थिति बने। सच्चाई के रास्ते पर बहुत शांत भाव से चलना चाहिए, बहुत समर्पित होकर के और बहुत संतोष पूर्वक चलना चाहिए। यह बात इस घटना से बहुत आसानी से अपन को मिलती है। और समर्पण कैसे होता है, वो कैसे मालूम पड़ता है, इसके लिए एक छोटी सी घटना आपसे कहता हूं, वर्णी जी के जीवन की घटना। मैं जयंती के पक्ष में नहीं हूं, हां बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, किसी की भी हो, अपनी भी क्यों ना हो, आचार्य महाराज की जयंती भी क्यों ना हो, तो आचार्य महाराज उसके पक्ष में नहीं है, शरद पूर्णिमा को उनके सानिध्य में नहीं, आप जहां हैं वहां सेलिब्रेट करिए, ओके, आप उनके पास आके क्यों कर रहे हैं। जयंती तो इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि हमने कई बार आपसे कहा कि वो दिन हमारे अपने शरीर के जन्म का है, हमारी आत्मा के जन्म का नहीं है भैया। हमारी आत्मा तब जन्म लेती है जब उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रोशनी आती है, तब जन्म लेती है। तो व्रत नियम संयम अगर हम ले ले तो वो दिन हमारा सेलिब्रेट करने लायक है, और खुद सेलिब्रेट करने, कोई करे या ना करे। अपना दीक्षा दिवस मैंने खुद सेलिब्रेट कर लिया, कैसे, अपने आचार्य महाराज को याद किया, यही तो सेलिब्रेट करना है कि हाँ आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, हमको याद है कि आपने हमारे सिर पर हाथ रखा था और हमारे मोक्ष मार्ग के लिए प्रशस्त किया था। तो वर्णी जी के जीवन की घटना बता रहा था, क्योंकि ध्यान से एकदम आवाज आई तो मुझे जवाब देना पड़ा कि हम जयंती नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके बोर्ड पे लिखा हो सकता है, लेकिन हम रविवारी प्रवचन कर रहे हैं और उसमें हम हमेशा की तरह उदाहरण दे रहे हैं। बहुत खतरनाक है हम इस मामले में, लग रहे हैं ना, तो एकदम बोल दिया उनसे। तो क्या हुआ, वर्णी जी के जीवन की बहुत सी ऐसी घटनाएं जिनमें उनकी सरलता भी झलकती है, उनकी विनय भी झलकती है और उनका समर्पण भी झलकता है। देखो, कोई चीज दुर्लभता से प्राप्त हो तो उसकी कीमत मालूम पड़ती है। वो तो जीवन में जैन तो थे नहीं बाई बर्थ, हम सबको तो विरासत में मिला है, विरासत में मिली हुई चीज की उतनी इज्जत थोड़ी होती है। पर फिर भी हैं कुछ लोग जो कि परंपरा से अपने जीवन में जो चीजें प्राप्त करते हैं उनमें इजाफा ही करते रहते हैं, उनको बढ़ाते रहते हैं। वो एक बार दर्शन करने गए शिखर जी की वंदना करने, तो एक वंदना शिखर जी की नीमिया घाट से, और पूरा 36 किलोमीटर का जो शिखर जी की वंदना का मार्ग है उससे भी की जाती है, बहुत लंबा है, दो दिन लग गए। तो चले, अब रास्ते में जो है पानी वानी की तो सुविधा थी नहीं, और प्यास बहुत जोर से, धूप बहुत निकली हुई, दोपहर होने को हुई और अभी रास्ता बाकी है, पहुंचना संभव ही नहीं हो पाएगा जल्दी से, तो क्या करें। प्राण बिल्कुल कंठगत हो गए, उन्होंने लिखा कि मेरे प्राण अब निकले तब निकले, मुझे तो ऐसा लग रहा था। तो मालूम उन्होंने क्या कहा, एक जगह रुक करके उन्होंने कहा कि भगवान पारसनाथ, हम आपकी वंदना को आए और हमारे प्राण तो बचेंगे नहीं, प्यास बहुत लगी है, सो हमें कोई उससे हानि है नहीं, आपकी वंदना के शुभ निमित्त से आए थे, सो अगर मर भी जे हैं तो भी हमें अच्छी गति मिलने वाली है, मानो आपको कहा हुई है, फजीति आपकी हुई है कि आपके दर्शनों को एक व्यक्ति आया था और वो रास्ते में नहीं रहा, हम नहीं जानते, जो चाहो आप करो। कहते हैं ऐसा उनके मन में विचार आया और चार कदम चले और वहां पर जैसे अभी अभी किसी ने कोई पानी का शोध जमीन से खोद करके निकाल दिया हो ऐसा दिखाई पड़ा। और उसमें से उन्होंने पानी पिया, प्यास बुझी, बैठे और आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो वहां पर आधे किलोमीटर पर ही जो है एक फरलांग पर ही लोग बैठे हुए थे और प्यास से तड़फड़ा रहे थे। तो वर्णी जी ने कहा, अरे तुम लोग यहां बैठे हो, अब भी हम पानी पी के वहां आ रहे। कहले हम भी वहीं से, हमें तो नहीं मिला कहीं पानी। कहले आओ चलो हम चलवा चलते तुम्हें। तो वो जो है एक फरलांग पीछे जहां उन्होंने पानी पिया था वहां लेके आए, तो कहते हमारी बात झूठी निकल गई, वहां पानी वानी कुछ नहीं था। जहां हमने अभी थोड़ी देर पानी पिए पहले पानी पिया था वहां पानी नहीं था। ये क्या चीज है भैया, इसमें कौन सा साइंस है? अब इसमें साइंस वाइंस तो कुछ समझ में हमारे भी नहीं आया, आपके आवे तो खोजना, पर हमारे जो समझ में आया वो हम आपको बताते हैं कि जहां श्रद्धा हो तो श्रद्धा हमेशा सजल ही होती है। श्रद्धा में आंख दबदबा आती है, भर जाती है, गीलापन आ ही जाता है। और चाहे प्यास बुझी हो वर्णी जी के सच्ची के पानी से, चाहे नहीं बुझी हो, लेकिन वो समर्पण और श्रद्धा का जो भीगापन था उससे उनका मन और उनका शरीर सब भीग गया होगा, उनकी प्यास जो है वो बुझ गई होगी। हमें अपने जीवन में अगर कोई अच्छाई या कोई अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, ऐसा हमने अगर विचार किया है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा ही समर्पण हमारे मन में हो। तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाए। मैं सोचता हूं कि इस तरह अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ कि हम सबका जीवन अच्छा बने और हम अपने उस आत्मवैभव को प्राप्त कर लें जो हमारा स्वभाव है, बोले आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि। बुद्धि का बहुत अधिक विकास हुआ है। छोटे से बच्चे को भी दुनिया भर की सब बातें मालूम है। मुझे तो कई बार उन छोटे बच्चों से बात करते हुए बड़ा भय सा लगने लगता है कि अरे हम तो इतना कुछ जानते नहीं है जितना ये जानते। आज संसार की बातें बुद्धि से जितनी जानी जा सकती थी आज छोटे से छोटा बच्चा भी उन सब चीजों को जान रहा है। कुछ चीजें जिनको हम बड़े होने पर भी जानना पसंद नहीं करते वो आज छोटे से बच्चे को मालूम है। जिन चीजों पर हम अपने परिवार जनों के बीच बैठ करके विचार करना पसंद नहीं करते वो बातें आज छोटे बच्चे को मालूम है। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग बौद्धिक रूप से बहुत विकसित हुए हैं लेकिन इतनी अधिक समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न हुई हैं। जितनी अधिक बौद्धिक समस्याएं आज हैं उतनी पहले नहीं थी।
ये बिल्कुल आप अपने जीवन में खुद गौर से देखेंगे
तो हमने बुद्धि का विकास किया है लेकिन हमारी समस्याएं तो दूर की तो बनी रही। बुद्धि कुछ ही समस्याओं का हल दे सकती है सब समस्याओं का नहीं। समस्याएं तो जो हमारे भीतर राग और द्वेष की हैं जो हमारे संसार की हैं वो तो अनुभव और विश्वास से और श्रद्धा से ही पूरी होगी। तो वो जो हमारे भीतर एक संसार हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं उसको तो उसको जानने के लिए उसकी समस्या को दूर करने के लिए हमारे जीवन में आज विश्वास और श्रद्धा बहुत जरूरी है। धीरे धीरे ये कम होती चली जा रही। आज भाई का भाई के ऊपर मां का बेटे के ऊपर पिता का अपने बेटे के ऊपर ये विश्वास नहीं रहा। आज साधर्मी का साधर्मी के प्रति विश्वास बड़ी अनिश्चितता के दौर से हम गुजर रहे हैं। अगर हम गौर से देखें तो भले हम बुद्धिमान हैं लेकिन अनिश्चितता उतनी है। श्रद्धा निश्चितता देती है और संदेह हमें अनिश्चितता में डाल देता है। आज हम यही महसूस कर रहे हैं। हमें भरोसा नहीं है कि हमारे बाजू वाला हमारे साथ किस तरह पेश आएगा हमारे साथ क्या कर गुजरेगा हमें इतना विश्वास नहीं है। आज हम अपना घर ताला लगा करके 10 ताले लगा के जाते हैं फिर भी मन में बना रहता है कि पता नहीं बाजू वाले के यहां से कोई चढ़ करके और हमारे घर में घुस करके चोरी ना कर ले। और पहले पहले ऐसे लोग कहते थे मुझे तो बताते हैं कुछ लोग कि दुकान भी खुली हुई छोड़ करके जरा बाजू वाले से कह के जाते थे कि देखना भाई खुली हुई है खाना वाना खा के आए तो गए खाना खाने और किसी काम में फंस गए तो घंटे दो घंटे बाद लौटे तो हो सकता है कि बाजू वाले ने उठ करके और तुम्हारी थोड़ी बहुत ग्राहक आने पर दुकान भी चला दी हो। हां कुछ लूटपाट नहीं की दुकान और चला और भी। आज आज किसके जिम्मे सौंपिएगा अपना जीवन किसी के जिम्मे सौंप दे ये तक विश्वास नहीं रहा। और बुद्धि तो हमारे पास बहुत आ गई है हम बहुत होशियार और समझदार हो गए हैं। नहीं भैया ये समझदारी किस काम की जिससे जीवन में शांति और समता नहीं आई। आज मैंने आपने पता नहीं क्या ग्रहण किया। आप सोच रहे थे कि महाराज तो 2 मिनट बोले हैं लेकिन 2 बातें उन्होंने बोल दी। मैं अभी यहीं कहीं बता देता हूं कि वो मैंने अपने पास गठिया के रख ली। आप रखो चाहे नहीं रखो सबके प्रति दया और हर परिस्थिति में समता रखना इससे बड़ा उपदेश तो और कोई नहीं हो सकता। बाकी तो मैं बोल रहा हूं वो सब वही उसी का। सब पर दया बहुत कठिन है। जिनसे हमारा काम बनता है उनको दया तो सहज रूप से हो जाती जिनसे हमारा काम नहीं बने उन पर कटाया करें हम। और चाहे जैसी परिस्थिति आए हमारे अनुकूल परिस्थिति आए सो तो सब में समता है मनो विपरीत परिस्थिति आए तब समता। क्योंकि हर परिस्थिति में समता रखना और सब पर दया रखना धर्म का उपदेश इतना ही पर्याप्त। ये आता कैसे है मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये तो अच्छा लगा कि दया आनी चाहिए सबके प्रति समता आनी चाहिए परिणामों में पर ये आएगी कैसे बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं आती। सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति जितनी हमारी श्रद्धा होगी उतने हम निश्चिंत होंगे और जितने हम निश्चिंत होंगे उतना अधिक हमारे परिणामों में निर्मलता आएगी। और निर्मलता का ही काम है कि सब पर दया और हर परिस्थिति में समता। ये जो निर्मलता है वो श्रद्धा के बिना नहीं आती है। तो हम थोड़ा सा अपने जीवन में झांक करके देखें कि हमारे अंदर श्रद्धा है कि नहीं है। श्रद्धा की मायने क्या है? हम कई बार सोचते हैं श्रद्धा शब्द बहुत सुनने में आता है श्रद्धा के मायने और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वास्तविकता के प्रति अनुराग का नाम श्रद्धा है। हमारी वास्तविकता क्या है? हमारा अपना परम पद हमारी वास्तविकता है, परमात्म पद ही हमारी वास्तविकता है। उस परमात्म पद के प्रति हमारा अनुराग, भगवान के प्रति हमारा प्रेम भाव, वो जो मोक्ष मार्ग पर चल रही है उनके प्रति हमारा अनुराग, उनके प्रति प्रेम भाव, यही है हमारी श्रद्धा। दुनिया भर के प्रति तो हम इस तरह का अनुराग रख लेते हैं मोह के वशीभूत होकर, लेकिन कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में अगर सच्चाई के प्रति अनुराग रखें, सच्चे रास्ते पर चलने वालों के प्रति अनुराग रखें और जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया उनके प्रति अनुराग रखें, तो हमारे जीवन में निश्चिंत आएगी, दया और समता परिणाम आएंगे। तो पहली बात कि श्रद्धा हमारे जीवन का समाधान दे सकती है, और श्रद्धा एक तरह का प्रेम और अनुराग है। श्रद्धा अहम शून्य अवस्था है, अहंकार से शून्य व्यक्ति ही श्रद्धा रख सकता है। दूसरे से अनुराग रखने वाला उसके गुणों से अनुराग रखेगा, और उसके गुणों से अनुराग कब रखेगा? जबकि उसके भीतर अहंकार नहीं होगा। और अपने को अगर सबसे ज्यादा गुणवान मानत हो तो दूसरे के गुणों को कहां देखो आप? तो दूसरे के गुणों को देखने वाला तो अपने को गुणवान मानेंगे ही नहीं, और हम सोचते हैं कि दूसरे के गुण देखने वाला ही गुणवान है। हां, वो गुणवान अपने आप हो जाता है, दूसरे के गुणों को देख करके गुणवान हो जाता है, दूसरे के गुणों की प्रशंसा करके उनके प्रति अनुराग रख करके स्वयं गुणवान हो जाता है। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानाद उपासनाथ पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति स्तपो निधिशु। समंत वज्राचार्य कह रहे हैं उसमें कि उच्चैर गोत्रम प्रणते, जो प्रणाम करता है दूसरे के प्रति विनय करता है वो ऊंचा हो जाता है, झुके थे और हो गए ऊंचे, झुकने में लगता कि हो गए अपन तो नीचे। अहंकारी को लगता है कि अरे झुक गए हैं तो हमारी कार्य गई, और वो उल्टा कह रहा है कि उच्चैर गोत्रम प्रणते, आप जितने झुको उतने ऊंचे हो जाओगे, और भोगो दानात, जितना दो उतना अधिक प्राप्त होगा। लगता उल्टा है, जैसे महाराज अभी कह रहे थे कि अपने पास जोड़ते जाओ, नहीं, जोड़ते जाओ तो तृष्णा कहलाएगी और छोड़ते जाओ तो दान कहलाएगा। प्राप्त कहते भोग, भोगो दानात, जितना देंगे उतना भोग उपभोग की सामग्री सहज ही मिलती चली जाएगी। और स्तवनात कीर्ति, आप दूसरे की स्तुति करो, आपकी कीर्ति फैलना शुरू होगी। ऐसा आचार्य समंत पर बड़ा कंका दिखती है, ये सब आता कैसे है? अहम शून्यता होने पर स्तवनात कीर्ति स्तपो निधिशु, हम बीच में थोड़ा सा भूल गए, भोगोदानात उपासनात पूजा, हम भगवान की उपासना करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें, तो क्या होगा? स्वयं की पूजा मिलने वाली है। उपासनात पूजा भक्ते सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से हमारा जीवन सुंदर हो जाता है, शरीर तो सुंदर हो ही जाता है, जीवन सुंदर हो जाता। भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात कीर्ति स्तपो निधिशु, जो तपस्वी जन है उनकी स्तवन करने से स्वयं कीर्ति को प्राप्त होते हैं। ये ऐसी श्रद्धा है, अहम शून्य होकर के ही हम अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को बरकरार रख सकते हैं। अगर अहंकार आ गया तो श्रद्धा नष्ट हो जाती। क्या हुआ एक बार मालूम? एक बुढ़िया अम्मा थी गांव में, तो उसके पास एक मुर्गा था, वो सवेरे बांग देता था, सूरज उगता था जब बांग देता था, पर बुढ़िया को यह लगता था कि मेरा मुर्गा अगर बांग नहीं दे तो सूरज नहीं उगेगा। हाँ, ऐसा लगता है, तुमको भी लगने लगता, अहंकार वश ऐसा लगने लगता। देखो, जब अपन इस संसार में नहीं थे तब भी इस संसार को सब काम चलत तो, और अपन इतने चले गए हैं मरण को प्राप्त हो जाएंगे, तब भी कछु में फर्क पड़ है, जिनसे चल रहे पसारा पहले से वो चलत रहे हमें। लेकिन ऐसा लगता है कि गृहस्थी हमारे जुम्मे है, हम ले रहे हैं तो इन औरों को का हुई है, और उसी में हम लगे हुए। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि अपने बच्चों को पालना तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को पालने की क्या आवश्यकता? हाँ, अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, वो समझदार हो गए, अब उनके बच्चे उनको पालने दो, आप कहां कोई जबरदस्ती उनके बच्चे भी पालने के लिए? आप निश्चिंत हो, अपना छोड़ो और उनकी जिम्मेदारी देना, हमने आपको पाल के बड़ा किया था, आप अपने पालो और उनको बड़ा करो। लेकिन ये इतना कहने में जितना आसान है उतना उसको हमको यही लगता है हम कर्ता बने फिरते रहते हैं। अहंकारी व्यक्ति या जिसकी श्रद्धा जितनी कम होगी वो उतना संसार का कर्ता बना फिरेगा। नहीं भाई, यहां संसार का कोई कर्ता नहीं है। किन्हू न करे न धरे को जैसी स्थिति है हम व्यर्थ कर्ता बने। वो बुढ़िया सोचती है कि मेरा मुर्गा अगर बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं उगेगा एक दिन जो है, और झगड़ा हो गया गांव के लोगों से। तो बुढ़िया ने मालूम क्या कहा, बुढ़िया ने धमकी दी कि सुनो अगर हमसे झगड़ा करोगे तो हम अपना मुर्गा लेकर के दूसरे गांव में चले जाएंगे और फिर तुम समझ लेना अंधेरे में अंधेरा रोने आएगा तुम्हारे यहां। अब उसको तो ऐसे लगता था, और सचमुच जो है एक दिन बुढ़िया ने और गुस्से में आकर के उठाया अपना मुर्गा और चली दूसरे गांव, और दूसरे गांव जाकर के सवेरे मुर्गे ने बांध दी, सूरज उगा तो बड़ी प्रसन्न। कहने कहो अब इतने उगे हैं सूरज जहां हम हैं वो तो अन्यारे इधर हुई है प्रसन्न। अब रो, अब मना रहा है जब जे है नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसा जो है हमारा अहंकार है जो कि हमारी श्रद्धा को, हमारे मोक्ष मार्ग को और मुश्किल में डाल देता है। हमें समझना चाहिए कि इस हमारे इस संसार में होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ इतना जरूर है कि हमारे भीतर जो संसार राग द्वेष का हमने बना लिया है स्वयं, उसमें जरूर फर्क पड़ता है। ये जो सृष्टि बनी हुई है इसके हम कर्ता भोक्ता और स्वामी, जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है कहते हैं, जिसको वीतराग सम्यक दर्शन होता है वही कर्तित्व भोक्तित्व और स्वामित्व को छोड़ देता है। और तीन ही चीजें तो हैं संसार में व्यक्ति को समस्या में डालने वाली, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। इस समस्या को कोई बुद्धि से नहीं सॉल्व कर सकता है, कर्तापने की समस्या, भोक्तापने की समस्या और स्वामीपने की। हर एक चीज पे हम अपनी मालकियत आरोपित करते हैं, मैं इतने उसका स्वामी हूं, मैं इस पूरे घर का स्वामी हूं, इस तरह हमारे भीतर स्वामित्व का भाव है। कहते हैं श्रद्धा हमारे इस कर्ता भोक्ता और स्वामीपनों को समाप्त कर देती अगर सच्ची श्रद्धा। और श्रद्धा जो एक तरह का अनुराग है या प्रेम है वो बहुत बहुत बड़ा काम करती है, फिजिकली भी और मेंटली भी वो हेल्पफुल है। अभी हम एक रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे सर, रीडर डाइजेस्ट में निकला, इंग्लिश की मैगजीन है रीडर डाइजेस्ट, उसमें वो लेख निकला कि क्या हम प्रार्थना और श्रद्धा और प्रेम इनके द्वारा हेल्दी हो सकते हैं क्या, क्या ये हमारे हेल्दी होने में मदद करती हैं क्या। कितना भी रोग शोक व्याधि हो जाए इसके बाद भी मन की जो प्रसन्नता है वो बनी रहना कोई सामान्य बात नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं के तमाम साधन मुहैया हो जाने के बाद भी व्यक्ति दुखी देखा जाता है, लेकिन जिसके पास कोई भौतिक सुख सुविधा नहीं है उसके भीतर भी अगर चित्त की प्रसन्नता है तो वो चित्त की प्रसन्नता आती कहां से। वो कहते हैं श्रद्धा से, प्रेम से और विश्वास से आती है। उन्होंने एक कोई डॉक्टर है, उन्होंने अपना वो लिखा उसमें कि उनका एक पेशेंट था, ये पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल अमेरिका में, वहां के प्रोफेसर, वहां के जो डॉक्टर थे, उन्होंने लिखा कि उनको टर्मिनल कैंसर हो गया था उनके पेशेंट को। अब वो ठीक होने का कोई गुंजाइश नहीं थी, तो उन्होंने पेशेंट से, हर कैंसर वाला डॉक्टर जो है पेशेंट से आखिरी में यही कहता है कि देखिए अब आप जो है कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, अब एक ही चीज है कि आप खूब खुश रहिएगा और भगवान का भजन करिएगा, गाइएगा, प्रार्थना करिएगा बस, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ करिएगा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा अगर आपने किसी को भगवान माना है तो। अब वो उसको छोड़ करके चला जाता है दूसरी जगह। एक साल के बाद जब वो पार्कलैंड लौटता है तो उसका जो कलीग रहता है, उसका साथी, वो कहता है कि तुम अपने उस पुराने पेशेंट से मिलना पसंद करोगे, तो बड़ा आश्चर्य करता है कि वो पेशेंट अभी है, एक साल बाद भी जिंदा है क्या। तुमने कहा कि हाँ जिंदा है, तुम देखने जाओगे। जाकर के देखता है उसका, फिर से जो है एक्सरे वैक्सरे करता है, दोनों लंग्स उसके जो खराब हो चुके थे बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो वो पूछता है अपने उस कलीग से कि इसका कैंसर कैसे ठीक हुआ, तो वो कहता है कि इसने जो है मिराकुलस थेरेपी की है, बहुत चमत्कारिक एक ट्रीटमेंट लिया। बोले क्या, बोले यही कि इसने प्रार्थना की है, उसको विश्वास ही नहीं हुआ, वो अपने वापस लौट गया अविश्वास के साथ कि ऐसा हो नहीं सकता, संयोग है कि अचानक ठीक गया होगा, प्रार्थना वार्ता से कुछ नहीं होता। ये सन 1980 की घटना है, बहुत लेटेस्ट, 20 साल हुए, ज्यादा पुरानी नहीं है। वो कहते हैं कि जब मैं लगातार ऐसी घटनाएं सुनते सुनते सन 88 में उन्होंने लिखा कि एक डॉक्टर रेंडॉल्फ, मुझे इन लोगों के नाम वाम वैसे भी याद नहीं रहते तो लिख के रखे हूं मैं, देख करके बोल रहा हूं, ऐसा नहीं समझना कि ये सब मुझे याद है, इतना बुद्धिमान नहीं है। 88 में जब उन्होंने इनके सामने इस डॉक्टर के सामने एक प्रैक्टिकल किया, लगभग 393 लोगों को उसने अपने उस प्रैक्टिकल में शामिल किया, और क्या किया कि आधे लोग जिनके लिए और लोग प्रार्थना कर रहे थे, जो पेशेंट थे बीमार थे, आधे लोग का एक ग्रुप बनाया जिनके लिए और लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जिनको उन्होंने बताया गया है कि किनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, किनके प्रति आप अपना अनुराग और प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, और आधे लोग जिनके प्रति कोई प्रार्थना प्रार्थना नहीं की गई थी, ना उनने की थी ना किसी ने उनके लिए की थी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्रद्धा प्रेम और विश्वास इतना सब कुछ कर सकता है। वो लिख रहे हैं कि उस प्रयोग के जो रिजल्ट्स आए उसमें सबसे पहला कि 5 गुनी कम एंटीबायोटिक लेना पड़ी उन्हें जिनके लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक चीज, 21 गुना कम जो कंजेक्शन हार्ट फेलियर होता है वो 21 गुना कम उन लोगों में हुआ जिनके लिए प्रार्थना की जा रही थी। वही फॉरेनर लिख रहा है कि वो जो प्रार्थना है वो पूरे विश्वास श्रद्धा और प्रेम से होनी चाहिए। पहली चीज कि प्रेम आपके भीतर है, और ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम है कि ये हमारे लोग हैं, देखो जिनसे हम परिचित हैं उनके प्रति तो प्रेम हो जाता है, लेकिन एक कॉमन, वो कह रहे हैं सबके प्रति प्रेम होना चाहिए उन क्षणों में जब हम भगवान की भक्ति या की अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत ओपन हार्टेड होना चाहिए। ओपन हार्टेड मतलब वो कह रहे हैं कि कोई सीमित हमारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए कि हमको ये पूर्ति हो जाए, पूर्ति के लिए नहीं, सब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अगर प्रार्थना की जाए तो उसका व्यापक असर होता है। और सबसे आखिरी बात कि प्रार्थना के क्षणों में ये फील हो कि आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा भगवान भी है। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जब मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा हूं भगवान के प्रति, श्रद्धा छोटी मोटी चीज नहीं है भैया, मैं तो कभी नहीं समझा पाता श्रद्धा को, ऐसे ही छोटे छोटे उदाहरण देता हूं शायद समझ में आ जाए। जिनको श्रद्धा हो जाती है और जो उसके लाभ लेना शुरू कर देते हैं वे जानते हैं कि वो तो गूंगे का गुड़ है, बताया नहीं जा सकता कि मैंने श्रद्धा से क्या पाया। जिस दिन हम श्रद्धा से क्या पाया ये बताने लगेंगे उस दिन शायद हमारी श्रद्धा भी खोखली हो जाएगी, उसमें कोई महत्व नहीं रहेगा। पर बाहर देखने में आता है कि श्रद्धा से कितनी चीजें होती हैं और अंतरंग में तो कितना कुछ समाधान मिलता है। वो कह रहे हैं कि उन क्षणों में ये अनुभव होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई है। एक घटना आती है, ईश्वर से प्रार्थना करी एक व्यक्ति ने कि भगवान मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, आप मुझे हमेशा सहारा देते रहिएगा। तो ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, और सचमुच जब जब भी वो रेत के किनारे चलता था तो 2 जोड़ी पैर जो है वो उसके हमेशा बने दिखाई पड़ते थे, एक उसके खुद के और एक जोड़ी पैर ईश्वर के। तो उसे लगता था कि मेरे साथ हमेशा ईश्वर है। एक बार ऐसा हुआ कि उस पर बहुत विपत्ति आई, बहुत घबराया कि मैं क्या करूं। तो वो नदी किनारे टहलने गया, उसके मन में थोड़ा सा संदेह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया हो, तब तो उस पर इतनी विपत्ति आ रही है। तो नदी किनारे गया तो हमेशा की तरह 2 जोड़ी पैर तो थे ही नहीं, 1 जोड़ी पैर थे। वो वहीं प्रार्थना में बैठ गया, उसने भगवान से प्रार्थना की, और कहते हैं कि भगवान को बुलाया उसने। सचमुच अगर हमारे भीतर श्रद्धा है तो भगवान दूर नहीं है हमसे, वो हमारे भीतर ही है, आ जाते हैं हमारी आवाज देने पर आ जाते हैं। कहते हैं कि भगवान आए, उसने कहा कि भगवान ऐसी विपत्ति में आपने तो कहा था हमेशा आपके साथ रहेंगे, और अभी मुझे लगता था कि आप साथ में हैं, अब तो क्लियर हो गया कि अब मेरे पिंस जो आ रहे हैं फुट पिंस वो तो 1 जोड़ी पैर के आ रहे हैं, आपके तो आ ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा सुनो, विपत्ति के समय भी मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं अब तुम्हारे साथ चल नहीं रहा हूं, तुम्हें अपनी गोद में उठाई हूं, ये 1 जोड़ी पैर मेरे मेरे हैं तुम्हारे नहीं हैं। उस समय जो है अब तुम्हारे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, तुमको अपने गोद में उठाने की आवश्यकता। हम अगर किसी के जिम्मे अपने को सौंप दें तब ये स्थिति बनती है, आई एम नॉट अलोन, ये फील होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी अपनी आत्मा की सामर्थ्य है, मेरी अपनी ईश्वर की शक्ति है, मेरी अपनी श्रद्धा है। ऐसी ये श्रद्धा होती है, और श्रद्धा क्या देती है भैया, और श्रद्धा देती हर परिस्थिति में समता रखना। जो कि अभी महाराज ने कहा था उसी के मैं थोड़ा सा मैंने विस्तार कर रहा हूं और कोई विशेष बात नहीं। कितनी बातें समझ ली, श्रद्धा हमें निश्चिंता देती है, श्रद्धा हमें अहंकार से रहित करती है, श्रद्धा हमारे भीतर एक तरह का प्रेम उत्पन्न करती है, उसकी वजह से हमें बहुत सारे समाधान जो वास्तव में हमारे आंतरिक जगत के समाधान है, वही जगत के समाधान तो बुद्धि से मिल जाते हैं, श्रद्धा से हमारे अंतरंग में बड़ा समाधान मिलता है, संतोष मिलता है और हम हर परिस्थिति में समता रख सकें, हर परिस्थिति को स्वीकार कर सकें। अरे भाई जो अच्छा है उसको तो हम जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, जो विपत्ति है उसको हम सहसा स्वीकार कहां पर कर पाते हैं। उसके लिए एक छोटी सी घटना सुनाता हूं कि हम सब कुछ स्वीकार कर लें तो कैसा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कठिन बात है। मैं आपसे कह रहा हूं मैं भी उसमें फेल हो सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब यहां पर जो है थोड़े बहुत कमी वेशी लोग हैं, भगवान ही पूरे हैं, बाकी सब अधूरे लोग हैं। आप थोड़े मेरे से, आपको लगता होगा कि महाराज जी ऊपर बैठे हुए हैं इसलिए तो मेरे से तो कम से कम श्रेष्ठ हैं। अरे भैया अगर ऊपर बैठने से कोई श्रेष्ठ होता तो ऊपर तो बच्चे भी खेल रहे हैं किसी तो ही होता वो तो अपने परिणामों में ऊंचे रहना चाहिए, ऊंचे रहने के लिए परिणाम ऊंचे रहना चाहिए है? क्या हुआ कि एक बूढ़ा था और उसका एक घोड़ा था और उसका एक बेटा था, ऐसी कहानी है वो मजे की, बच्चों के लिए तो बहुत मजा आएगी लेकिन है बहुत बहुत मजेदार तो है पर बहुत उपदेश देती है। हम जब भी इस कहानी को याद करते हैं तो हमको लगता है कि ऐसा तो हम कर ही नहीं पाते हैं। तो एक घोड़ा था उस बूढ़े के पास और एक बेटा था उसके पास। एक बार क्या हुआ कि वो इतना प्यारा घोड़ा था कि सब उसको आसपास बहुत चाहते थे। एक दिन वो रात में गायब हो गया तो अब बेटा बचा अकेला, कुल मिला के तो एक घोड़ा और एक बेटा और घोड़े चला गया। तो गांव के सब लोग आए, बड़ी सहानुभूति प्रकट की कि आपका घोड़ा था और अब आपके साथ बड़ा बुरा हुआ, आपका घोड़ा नहीं रहा, चला गया। तो बहन बूढ़े ने क्या कहा मुस्करा करके कि ये मत कहो कि बुरा हुआ, ये कहो कि पहले घोड़ा था अब नहीं है, अब इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा। तो लोग सोचे कि शायद अब साठ का तो वैसे ही हो गया और इतनी विपत्ति आ गई इसलिए है ऐसा कह रहा है। तो उन्होंने जो है लौट गए। अब क्या हुआ कि 10-15 दिन के बाद में अस्तवल में देखा तो 15 घोड़े, वो तो घोड़ा आए ही वापस और उसके साथ 15 घोड़े आए। अब सारे लोग फिर कांग्रेचुलेट करने आ गए, अरे वाह कितना बढ़िया हुआ कि इतने सारे वो घोड़ा गया था कोई बात नहीं लेकिन अब तो 15 घोड़े लेके आ गया, बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ। उसने कहा ये कुछ मत कहो कि अच्छा हुआ, ये कहो कि पहले एक घोड़ा था अब 15 घोड़े और आ गए, बस इतने ही, क्या अच्छा और क्या बुरा। अब जैसे ही 15 दिन गुजरे कि वो जो नए घोड़े आए थे उस पर लड़का बैठ करके जा रहा था, उस नए वाले घोड़े ने पटक दिए तो पैर टूट गया उसका। फिर लोग भागे भागे आए, अरे इससे अच्छा तो नहीं आते वो 15 घोड़े हैं और ये तो बड़ा बुरा हुआ, तुम्हारे बेटे का तो पैर टूट गया। तो उसने कहा कि ये मत कहो कि बुरा हुआ कि अच्छा हुआ, अरे बस पहले घोड़ा एक था वो चला गया, 15 और आ गए, अब बेटा था, बेटा पहले ठीक था अब वो उसका पैर टूट गया, बस अब इसमें क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। तो फिर लोगों ने कहा कि कैसा बुरा है ये आदमी, इसको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि पैर टूट गया फिर भी कह रहा है कि ये मत कहो कि बुरा हुआ, तो क्या अच्छा हुआ क्या, बेटे का पैर टूटना अच्छा है क्या। वो चले गए चुपचाप निराश होकर के। अब एक दिन की बात कि सारे गांव में मुनादी फिराई गई कि दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया है इसलिए हर घर पीछे एक नवयुवक सेना में भर्ती होगा। अब लो सैनिक आए और सबके घर से एक एक नवयुवक को ले जाने लगे। बूढ़े के पास एक ही बेटा था लेकिन उस बेटे का पैर टूट गया था, अब कैसे ले जाएंगे। अब सबके घर से तो बेटे चले गए सेना में और बूढ़े का बेटा घर में रह गया। तो सब फिर आए कि मैं बहुत अच्छा हुआ आपके साथ तो बहुत अच्छा, कम से कम आपका बेटा आपकी आंखों के सामने तो है, हमारा तो सेना में चला गया, क्या पता बचेगा कि नहीं। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा संदेश दे रही है। उसके बाद भी उस बूढ़े ने कहा कि कुछ मत कहो कि कब अच्छा हुआ और कब बुरा हुआ, कल तुम जिसे अच्छा कहते थे आज उसे ही बुरा कहते हो, आज जिसे बुरा कहते हो कल हो सकता उसे ही अच्छा कहो। यहां अच्छा और बुरा हमारे अपने दृष्टिकोण पर है। अगर हमारे मन में अपने उस परमात्म पद के प्रति श्रद्धा है तो हम अच्छी बुरी हर परिस्थिति में और अपने मन को संभाले रखें, समता भाव रख सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसी भावना के साथ कि हम सब श्रद्धा और विश्वास को अपने भीतर पैदा करके अपना कल्याण करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। मिथ्या तम नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आता पर भाष देखो, वायु सीधा पानी है।